हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, श्री गदाधर पंडित का आविर्भाव है। तो गदाधर पंडित जिनके नाम का उच्चारण हम रोज करते हैं कीर्तन में, या फिर हम जब हरि नाम का उच्चारण करते हैं तो उस समय हम पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उसमें श्री गदाधर पंडित का वर्णन आता है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तवी गौर भक्त ब्रह्म। तो ये जो गदाधर पंडित हैं जिनके बारे में हमें सुनने को या जानकारी प्राप्त होती है, मूलतः दो ग्रंथों में, एक है श्री चैतन्य चरितामृत और दूसरा है श्री चैतन्य भागवत। तो आज उनका आविर्भाव है, तो ये आविर्भाव और तिरोभाव ये एक वैष्णव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं, क्योंकि जिन आचार्यों का आविर्भाव होता है या जिस दिन उनका तिरोभाव होता है, तो उस दिन वो जो वैष्णव हैं, वो जो आचार्य हैं, वो बहुत अधिक कृपा प्रदान करते हैं। जैसे हम भौतिक जगत में भी देखते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म दिवस होता है, बर्थडे होता है, तो वो उस दिन आप उसके पास जाओ और किसी चीज़ की मांग आप करते हो तो बहुत सरलता से वो व्यक्ति दे देता है, या उस दिन उस व्यक्ति को प्रसन्न करना बहुत सरल हो जाता है। तो उसी प्रकार से किसी भी महान आचार्य का आविर्भाव या तिरोभाव होता है, तो उस दिन हम उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं ना, उन आचार्य को, उन वैष्णवों को, और उस दिन उनसे विशेष कृपा की याचना कर सकते हैं। और इससे हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम बहुत तीव्रता से परिवर्तन ला सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि ये जो पंच तत्व हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रील अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवाद पंडित, तो प्रभुपाद कहा करते थे कि सारे जगत को इन पांचों के बारे में पता हो जाना चाहिए। तो प्रभुपाद ने इसलिए एक बुक प्रदान किया, लॉर्ड चैतन्य इन फाइव फीचर, इंग्लिश में वो किताब है जो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला से कंपाइल की गई है। तो प्रभुपाद इस पर जोर देते थे और कहा करते थे कि जो भगवान कलयुग में अवतरित हुए हैं वो केवल अकेले अवतरित नहीं हुए हैं, वो अपने सांगो पांगार्श पार्षदम, अपने अंग उपांग और उनके पार्षदों के साथ भगवान अवतरित हुए हैं, जो चैतन्य महाप्रभु हैं। तो आज गदाधर पंडित का आविर्भाव है, तो गदाधर पंडित हम जानते हैं कि ये जो पंच तत्व हैं ये कृष्ण लीला में इनका एक विशेष स्थान है। हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु है वो कौन है? साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहीं अन्य, कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो राधा और कृष्ण के मिलित विग्रह हैं, एक तनु। राधा और कृष्ण जब एक हो जाते हैं और कलयुग में अवतरित होते हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु हैं जो कृष्ण श्रीमती राधा रानी के गौर कांति को और उनके मूड को जब धारण करते हैं, वही कृष्ण गौरांग महाप्रभु बन जाते हैं। और दूसरे हैं नित्यानंद प्रभु, बलराम हैल निकाय नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो कृष्ण लीला में बलराम जी थे वो आदि अवतरित हुए हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में, और जो अद्वैत आचार्य हैं ना, वो सदाशिव है या महाविष्णु के अवतार हैं अद्वैत आचार्य, और जो गदाधर पंडित हैं जिनके बारे में हम आज सुनेंगे, उनके कुछ चरित्र के बारे में, उनके कुछ चैतन्य महाप्रभु के साथ लीलाओं के बारे में। तो ऐसे जो गदाधर पंडित हैं जिनका वर्णन श्रील कवि कर्णपुर अपने ग्रंथ गौर गणोदेश दीपिका में करते हैं, वो कहते हैं कि जो गदाधर पंडित है वो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, श्रीमती राधा रानी। तो जो गदाधर पंडित है वो ब्रज लीला में या वृंदावन की लीला में साक्षात श्रीमती राधा रानी है। तो गदाधर पंडित जो चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने के एक साल बाद वो अवतरित हुए थे और उनका जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में और उनके पिता का नाम था माधव मिश्र और उनकी माता का नाम था रत्नावली। तो गदाधर पंडित को बचपन से ही दो नामों से पुकारा जाता था। कई भक्त उनके कहते थे गदाई, गदाई कहते थे, जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम किसी को कुछ कहते हैं, कुछ निक नेम देते हैं, तो वैसे ही गदाधर को गदाई कहा जाता था और दूसरा उनको कहते थे पंडित प्रभु, उनको कहा जाता था पंडित प्रभु। तो ये गदाधर पंडित बहुत ही अपने बचपन में भी बहुत ही शांत स्वभाव के थे और बचपन से ही परम विरक्त थे। मतलब उनको किसी भौतिक चीजों के प्रति कोई ऐसा आकर्षण नहीं था गदाधर पंडित को, और सेल्फ कंट्रोल और किसी भी भौतिक सुविधाओं के लिए या किसी और चीजों के लिए अपना समय नहीं गंवाते थे या किसी और प्रजल्पा जैसे कृष्ण के अलावा कोई और विषयों में वो चर्चा करने में रस नहीं लेते थे। तो बचपन से ही ऐसे जो गदाधर पंडित हैं वो अवतरित हुए थे नवदीप के पास। एक गांव है बेलिटी, बंगाल में एक बेलिटी गांव है, उस गांव में वो अवतरित हुए थे और बाद में वो मायापुर आए थे। तो बचपन से ही निमाई पंडित, चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में होते थे तो उनको निमाई कहा जाता था क्योंकि वो पढ़ाई में सबसे अधिक बुद्धिमान थे। तो ये जो गदाधर पंडित हैं और निमाई पंडित, तो ये आसपास ही रहते थे। आप मायापुर जाते हैं तो जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है वहाँ के कुछ दूरी पर अद्वैत आचार्य का घर है, श्रीवास आंगन है और उसके पास ही गदाधर आंगन है जहाँ गदाधर पंडित रहते थे। तो बचपन से निमाई पंडित और गदाधर पंडित हमेशा साथ साथ खेलते थे और एक दूसरे के अलावा रह नहीं पाते थे क्योंकि कृष्ण लीला में ये साक्षात कृष्ण और श्रीमती राधा रानी है। तो जब ये सब अवतरित हुए थे तो उस समय नवदीप में बहुत ही एक प्रकार से बुरी स्थिति थी क्योंकि नवदीप के सारे जो लोग हैं वो भौतिक कार्यकलापों में मग्न हो गए थे। किसी की कोई रुचि नहीं थी कृष्ण के बारे में बोलने में या कृष्ण के बारे में चर्चा करने में या कृष्ण की सेवा करने में। तो लेकिन ये जो गदाधर पंडित हैं, जो निमाई पंडित हैं, ये एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो उनके टीचर का नाम था गंगादास, गंगादास का टोल, गंगादास पंडित का टोल। तो बंगला में टोल का मतलब है स्कूल। तो निमाई पंडित और गदाधर पंडित ये एक ही स्कूल में पढ़ते थे गंगादास के टोल में। और आवाज थोड़ा ठीक करिए। तो निमाई पंडित को बहुत ही निमाई पंडित को बहुत ही अपने बुद्धिमता का और अपने ज्ञान का बहुत अधिक घमंड था। तो ऐसा वर्णन आता है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं नवदीप में जब निमाई के रूप में वो थे तो जब भी वो चलते थे रास्ते से तो कई सारे ऐसे जो विद्यार्थी होते थे वो डरते थे उनसे क्योंकि निमाई पंडित जब चलते थे तो किसी भी एक लड़के को पकड़ते थे अपने स्कूल मेट को और उसके हाथ पकड़ के उससे प्रश्न पूछते थे और प्रश्न पूछ के उसको हरा देते थे। तो हर कोई उनसे डरता था और विशेष रूप से नवदीप में जो वैष्णव गण थे जिनका मन कृष्ण में लगा होता था ऐसे लोग निमाई पंडित को मिलने में कोई रुचि नहीं लेते थे, निमाई से दूर भागते थे चैतन्य महाप्रभु से क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नवदीप में केवल विद्या रस का आस्वादन कर रहे थे, मतलब विद्या का अर्जन करना और लोगों को यह दिखाना कि मैं कितना बुद्धिमान हूं, मैं कितना पंडित हूं, मैं कितने शास्त्रों को जानता हूं। तो इस प्रकार से निमाय पंडित अपनी विद्या का प्रदर्शन करते थे। तो निमाय पंडित के कई मित्र थे, उनमें से एक थे मुकुंद और दूसरे थे गदाधर। तो मुकुंद जब भी सामने से आते थे तो निमाय को देख के भाग डर के चले जाते थे, क्योंकि निमाय पंडित का जो गर्व था वो कोई तोड़ नहीं सकता था, उनके बुद्धिमत्ता को कोई हरा नहीं सकता था। तो एक दिन जब निमाय पंडित अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ जा रहे थे तो उस समय सामने से ही मुकुंदत आते हैं, और मुकुंदत जैसे देखते कि निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु सामने से अपने विद्यार्थियों के साथ आ रहे हैं, बल्कि चैतन्य महाप्रभु जब निमाय थे तो वो स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन इतने बुद्धिमान थे कि आपने टीचर को भी वो हरा देते थे। उसको थोड़ा उस तरफ कर सकते हैं, हरे कृष्ण, ठीक है। तो निमाय पंडित आप कर सकते, मेन जो वॉल्यूम है उसको कम करिए। तो जो निमाय पंडित हैं वो, तो हम एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो निमाय पंडित हैं वो अपने विद्यार्थियों के साथ जा रहे थे, तो उस समय मुकुंद दूसरी ओर से आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि निमाय पंडित अपने भक्तों के साथ आ रहे हैं, विद्यार्थियों के साथ आ रहे हैं। तो जैसे ही निमाय पंडित को मुकुंद दत्त देखते हैं तो दूर से ही अपना रास्ता चेंज कर देते हैं। तो निमाय पंडित कहते हैं कि क्या हुआ, इस मुकुंद को क्या हुआ, मुझे देखकर क्यों इसने रास्ता चेंज किया। तो उनके शिष्यगण कहते हैं निमाय के कि शायद मुकुंद को कोई महत्वपूर्ण काम आ गया होगा, इसलिए उसने अपना रास्ता चेंज किया है या किसी और स्थान में गया है। तो लेकिन निमाय पंडित कहते कि नहीं, कि ये जो मुकुंद है जो कृष्ण के महान भक्त हैं, क्योंकि मैं हर समय कृष्ण के अलावा भौतिक विषयों की चर्चा करता हूँ, तो ये जो मुकुंद है वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है। हाँ, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो कृष्ण के अलावा किसी और चर्चा में रस नहीं लेते हैं। तो रघुनाथ दास जी स्वामी कहते हैं कि जो जीवा है यदि वो कृष्ण के अलावा किसी और विषयों की चर्चा करती है तो वो वेश्या के समान है। हाँ, तो जीवा को रघुनाथ दास गोस्वामी वेश्या की उपमा देते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के अलावा बाकी विषयों में चर्चा करने की या चर्चा करने में बहुत आनंद अनुभव करती है। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को बहुत अधिक गर्व था जब वे नवदीप में थे निमाय के रूप में, और कोई भी उनके पास नहीं जाता था जो विशेष रूप से भक्त होते थे और उनसे दूर दूर भागते थे। तो लेकिन एक दिन ऐसे ही जो गदाधर पंडित हैं वो आ जाते हैं, और गदाधर पंडित का निमाय हाथ पकड़ते हैं और गदाधर पंडित को कहते हैं कि हे गदाधर, बताओ तुम अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझते हो, तो मैं तुम्हें पूछता हूं कि मुक्ति का मतलब क्या है। तो गदाधर पंडित कहते हैं मुक्ति का मतलब है कि आत्यंतिक दुख विनाश, कि जो भौतिक जगत के दुख हैं उनसे मुक्त हो जाना, इसे ही मुक्ति कहते हैं, या इस भौतिक बंधन से छूट जाना। तो निमाय पंडित कहते हैं कि यह नहीं, तुम शास्त्रों का सही ढंग से अध्ययन नहीं करते हो। तो निमाय पंडित कहते हैं कि तुम गदाधर घर चले जाओ और कल फिर से आ जाओ, ठीक से शास्त्रों को पढ़ के, और फिर मुझसे वार्तालाप करो। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु या जो निमाय पंडित हैं वो गदाधर को इस प्रकार से वार्तालाप करते थे, उनको हर समय हराते थे, और निमाय पंडित अपना ये जो गर्व है वो सोचते थे कि पूरे नवदीप में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे गर्व का खंडता है या मेरे विद्या को विद्या के बल पर मुझे हरा सकता है। तो निमाय पंडित हर समय बहुत अधिक गर्वित रहते थे और जितने भी नवद्वीप में वैष्णव होते थे तो वैष्णव कहते थे कि कब वो दिन आएगा कि ये जो निमाय पंडित ये इतना अधिक बुद्धिमान है ये वैष्णव बन जाएगा। तो एक दिन जो श्रीवास पंडित हैं जो पंचतत्व मंत्र हम गाते हैं तो उनमें से जो श्रीवास पंडित है तो श्रीवास पंडित कहते हैं कि हे निमाय तुम ये सब शास्त्रों का अध्ययन करने में संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करने में अपना समय क्यों गवा रहे हो, तुम कृष्ण के नामों का उच्चारण क्यों नहीं करते। तो ये सुनकर निमाय पंडित कहता है उनके चरणों का स्पर्श करके कि हे श्रीवास पंडित कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप सबकी जो प्रार्थनाएं हैं आप सबकी जो इच्छाएं वो पूरी हो जाएगी। और निमाय पंडित ने एक दिन कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इतना बड़ा वैष्णव बन जाऊंगा इतना महान भक्त हो जाऊंगा कि वह नारद और शिव जी भी मेरे से सुनने के लिए आएंगे मेरा संग करने के लिए वो सब लोग लालायित होंगे। इस प्रकार से निमाय पंडित वर्णन करते थे अपने गर्व का या अपने विद्या का और सब लोग नवद्वीप में उनसे डर जाते थे उनसे बात करने के लिए भी। तो चैतन्य महाप्रभु जब अपने निमाय पंडित के रूप में नवद्वीप में इस प्रकार की लीलाएं करते थे और बहुत अधिक विद्या के रस का आस्वादन करते थे तो एक दिन चैतन्य महानिमाय पंडित बहाना बनाते हैं और अपनी माता शशि माता को कहते हैं कि मैं अभी जाके आता हूँ। वो कहते हैं कि मैं गया जाता हूँ क्योंकि गया में जो हमारे पितृगण होते हैं उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए। तो ये बहाना बना के चैतन्य महाप्रभु गया में जाते हैं और गया से जब वो वापस आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया था क्योंकि पहले तो केवल शास्त्रों की चर्चा करते थे संस्कृत ग्रामर की चर्चा करते थे और अपना इतना उनको घमंड था कि किसी को भी हरा देते थे। लेकिन जैसे ही निमाय पंडित गया में गए और वहां उनके आध्यात्मिक गुरु ईश्वरपुरी से मिले और ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और वो जब वापस आते हैं तो नवद्वीप में आते ही उनके अंदर बहुत अधिक परिवर्तन आ गया था कि पहला इतना उनके हृदय में अहंकार था घमंड था लेकिन आज जब वो वापस आए थे तो उनके हृदय में लव मात्र भी अहंकार नहीं था और घमंड नहीं था और किसी भी वैष्णव को देखते थे तो उनको प्रणाम करते थे उनसे कृष्ण के बारे में चर्चा करते थे और केवल कृष्ण के संबंध में वो रोते रहते थे। तो जब निमाय पंडित गया से वापस आते हैं तो अभी उनमें पूरी तरह से परिवर्तन आ गया था और फिर वो आके कृष्ण के लिए रोते रोया करते थे और वो कहा करते थे कोथाए कृष्ण कोथाए कृष्ण हाँ कृष्ण कहाँ है कृष्ण कहाँ है। तो इस प्रकार से निमाय पंडित में इतना बड़ा रंग देखकर नवद्वीप के जो वैष्णव लोग हैं वो आश्चर्यचकित हो गए इस निमाय पंडित को क्या हो गया क्या इसके अंदर कृष्ण तो संचारित इनके हृदय में तो नहीं चले गए। तो इस प्रकार से जब सोच रहे थे सब लोग तो निमाय पंडित जो अभी बहुत अधिक गंभीर हो गए थे कृष्ण भक्ति के लिए वो कई सारे वैष्णवों को अपने पास बुलाते हैं और उनके गले में अपना हाथ डाल के रोते हैं और निमाय पंडित कहते हैं कि आप सब लोग मेरे बंधु हो और मैं मेरे हृदय का जो दुख है वो आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हूँ। तो फिर निमाय पंडित कहते हैं कि आप लोग कल मुझे शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में मिलो तो उस समय जब आप लोग उस घर में आओगे तो मेरे हृदय में बहुत कुछ है कहने के लिए और मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। हाँ किस बात के लिए दुखी हूँ क्योंकि कृष्ण मेरे जीवन से चले गए हैं कृष्ण मेरे जीवन में नहीं है। निमाय पंडित इस बात को कहते हैं तो दूसरा दिन जब उदित होता है और नवद्वीप के सारे भक्तों को ये बात का पता चलता है कि जो निमाय पंडित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं कल शुक्ला पर ब्रह्मचारी के घर में जिनका घर गंगा के किनारे में था जब नवद्वीप जाते हैं तो ऐसे कई लीला स्थलियां हैं चैतन्य महाप्रभु की जिनका आप आज भी दर्शन कर सकते हैं। तो जब दूसरा दिन उदित हुआ तो चैतन्य महाप्रभु नीलाम्बर ब्रह्मचारी के घर में चले जाते हैं। तो इस बात को गदाधर पंडित ने सुना था जिनका आविर्भाव है, तो उनसे संबंधित जो चैतन्य की लीलाएं हैं उनको हम सुनेंगे। तो जब गदाधर पंडित ने सुना कि कल के दिन निमाई पंडित अपने हृदय की बहुत विशेष बातें बताने जा रहे हैं, कृष्ण के बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं, तो गदाधर पंडित भी सुबह जल्दी जाके उस शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के घर में जाके छुप गए, किसी एक कोने में जाके छुप गए। तो कई सारे वैष्णव नवदीप के आ गए थे उस घर में, और जब निमाय पंडित आए तो निमाय पंडित जब आते हैं तो निमाय पंडित जैसे ही बैठते हैं और भक्तों को देखकर वो चर्चा करने लगते हैं, और भक्तों को देखकर वो भागवतम का श्लोक उच्चारण करते हैं या भगवान के संबंधित श्लोकों का उच्चारण करते हैं। तो जैसे ही निमाय पंडित श्लोकों का उच्चारण करते हैं तो हर कोई वैष्णव वहां रोने लगता है कृष्ण के संबंध में सुनकर। और जो निमाय पंडित है वो भी कहते हैं कि की करेंगू कोथा जाऊं, कि मैं क्या करूं, मैं कहां चले जाऊं, कि मेरे हृदय के जो प्राणनाथ हैं, जो कृष्ण हैं, वो मुझसे गुम हो गए हैं, मैं उनको ढूंढ रहा हूं फिर भी मुझे कृष्ण नहीं मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रो रहे थे, और ये देखकर जितने भी भक्त वहां थे उस घर में हर कोई वहां रो रहा था। और इस बात को सुनकर गदाधर पंडित जब अंदर अपने आप को जिन्होंने छुपा के रखा था वो भी गदाधर पंडित भी रोने लगे, चिल्लाने लगे और मूर्छित होकर गिर पड़े। तो ऐसा वर्णन आता है चैतन्य भागवत में कि चैतन्य महाप्रभु ने रोते रोते वहां का जो एक घर का जो खंभा था उसको पकड़ लिया था और वो खंभा भी उनके ऊपर गिर गया। तो इस प्रकार से हर कोई भावावेश में आकर रो रहा था, जमीन पर लोटपोट हो रहा था। तो फिर चैतन्य महाप्रभु शांत हो जाते हैं निमाय पंडित, और फिर वो पूछते हैं कि अंदर कौन है, इस घर में आओ कोई है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही पूछा तो वहां के जो भक्त थे उन्होंने कहा कि घर में अभी आपके जो गदाधर हैं, क्योंकि निमाय पंडित को गदाधर सबसे अधिक प्रिय थे, चैतन्य महाप्रभु को कोई सबसे अधिक प्रिय था, तो वो थे गदाधर पंडित। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गदाधर, जब वो सुनते कि गदाधर अंदर हैं जो छुपे हुए हैं, और जब उन्होंने देखा गदाधर की स्थिति को, तो गदाधर पंडित अपने सर को नीचे करके जोर जोर से रो रहे थे कृष्ण के लिए। तो गदाधर पंडित को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोले गदाधर तुम्हें से सुकृति शिशु है ते कृष्ण से करिला दृढ़मति। तो कहते कि हे गदाधर तुम इतने भाग्यवान हो कि बचपन से ही तुम्हारा जो मन है वो कृष्ण में लगा रहता है। तो इससे पहले जब वो और छोटे बालक थे गदाधर पंडित, तो जब वो चैतन्य महाप्रभु के जो गुरुदेव हैं श्री ईश्वरपुरी जब नवदीप में आए थे, तो गदर और वो श्रीवास गोपीनाथ आचार्य के घर में जब वो रहते थे, तो ईश्वरपुरी जो चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु हैं रोज श्रीमद् भागवत लेक्चर दिया करते थे। और गदाधर पंडित बहुत छोटे थे तब वो जाते थे उनके पास और केवल श्रीमद् भागवतम को सुना करते थे। और ईश्वरपुरी ने अपना ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था श्री कृष्ण लीलामृत, श्री कृष्ण लीलामृत को भी वो सुनाया करते थे। तो केवल एक ये जो गदाधर थे जो बालक थे उनका कृष्ण के बारे में सुनने में इतना गाढ़ अनुराग था कि वो सुनते रहते थे और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहती थी। तो जो भी वैष्णव है इस बात को देखते थे तो वो आचंबित होते थे कि ये छोटा सा बालक इसका कितना अनुराग है श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए, कृष्ण के बारे में सुनने मात्र से ये रो पड़ता है। तो ये जो कृष्ण के लिए रोना ये वास्तव में स्थिति है कृष्ण भक्ति में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नयनम गलग अश्रुधारया वदनम गलग रुद्धया गिरा कुलकर निचितम वसु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। कि हे कृष्ण, कब वो दिन आएगा जब मैं आपके नामों का उच्चारण करते हुए मेरे आंखों से आंसुओं की धारा बहेगी। तो इसको कहते कि चांटिंग की शुरुआत हो गई है। जैसे हम कहते हैं कई बार कि अभी चांटिंग खत्म हो गई है मेरी, लेकिन हमारे चांटिंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरि नाम के उच्चारण की शुरुआत क्या है, नयनम गलद अश्रुधारया। तो इस प्रकार से व्यक्ति जब भगवान के बारे में गंभीरता से सुनता है और उनके नामों का उच्चारण करता है, तो वास्तव में उसके हृदय में भगवान के लिए एक विरह महसूस होता है। जैसे कि कोई चीज आपकी खो जाती है, जिस चीज से आपको बहुत अधिक लगाव था, बहुत अधिक प्रेम था, और यदि वो चीज आपसे दूर चली जाती है या खो जाती है, तो आप उस चीज के लिए रोते हो या फिर विरह महसूस करते हो। तो इसी प्रकार से गदाधर पंडित जब छोटे ही थे, जब वो कृष्ण के बारे में सुना करते थे, तो उनको बहुत अधिक विरह का अनुभव होता था कि मेरे जो जीवन में कोई चीज मिस हो गई है, या मेरे जीवन का जो अमूल्य धन है वो खो गया है। तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि ये जो गदाधर पंडित हैं, जो साक्षात श्रीमती राधा रानी हैं, जो कृष्ण के रूप में, कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, तो गदाधर पंडित या जो श्रीमती राधा रानी हैं, उन्होंने भी एक पुरुष का जो शरीर है वो धारण किया। तो क्यों नहीं उन्होंने स्त्री का शरीर धारण करके आए, श्रीमती राधा रानी ने आना ही था तो वो उन्होंने आना चाहिए था स्त्री के शरीर में या फिर राधा रानी के उस दिव्य शरीर में। तो हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी का जो अंग कांति है, कृष्ण ने क्या किया, देखा कि मेरी भक्ति करके ये जो श्रीमती राधा रानी है इसको इतना अधिक आनंद क्यों मिलता है, मेरी भक्ति करने में क्या इतना आनंद है। तो कृष्ण को अपने भक्ति से मिलने वाला आनंद पता नहीं था, और वो सोचा करते थे कृष्ण कि मुझे देखकर, मेरे सौंदर्य को, मेरी सुंदरता को देखकर ये जो श्रीमती राधा रानी है या वृंदावन की जो गोपियां हैं वो इतना क्यों आकर्षित होती हैं, क्यों इतना आनंद का अनुभव करती हैं। तो इसी कारण से इस चीज को जानने के लिए, जैसे कृष्ण को भागवतम के पहले संस्करण में कहा गया है कि वो स्वराज है और भिज्ञा है, मतलब वो सब चीज जानते हैं और वो स्वतंत्र हैं, फिर भी जो कृष्ण जो इस संसार की सारे चीजों को जानने वाले हैं वो एक चीज को नहीं जानते कि श्रीमती राधा रानी को उनकी भक्ति करके क्या आनंद अनुभव होता है। तो इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के मूड को स्वीकार करते हैं, उनके भाव को स्वीकार करते हैं और उनके अंग कांति को स्वीकार करते हैं, उनके कलर को स्वीकार करते हैं, और वही कृष्ण जो श्यामल है वो गोरे हो जाते हैं, जिनको गौरांग महाप्रभु कहा जाता है। तो गदाधर या श्रीमती राधा रानी गदाधर का रूप धारण करके वो आती है कि जो कृष्ण है जो अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में है और जो मेरा रोल अदा कर रहे हैं वो सही रूप से मेरा अभिनय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने के लिए गदाधर पंडित उनके साथ रहते थे जो श्रीमती राधा रानी है। और हर समय चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि कोई ऐसा समय नहीं था कि गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के संग में नहीं होते थे। शुरुआत से लेकर चाहे वो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अपनी कई प्रकार की लीलाएं उन्होंने प्रकट की, उस समय भी गदाधर पंडित उनके साथ हैं, और आगे चलकर जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से संन्यास ग्रहण करने के बाद जगन्नाथपुरी गए तो उस समय भी जो गदाधर पंडित हैं वो चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ करते थे। तो इस प्रकार से वर्णन आता है कि जो सबसे अधिक जो स्नेह था चैतन्य महाप्रभु का किससे, तो वो उनके स्नेह के जो पात्र थे वो गदाधर पंडित थे। तो इसलिए जो गदाधर पंडित है वो श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है, हाँ श्रीमती राधा रानी से वो अभिन्न है, हाँ साक्षात श्रीमती राधा रानी है जो चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों को चेक करती है। जैसे श्रीमती राधा रानी को गुरु कहा गया है और बलराम भी गुरु के प्रतिनिधि हैं। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि किस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु गया से वापस आते हैं और वो कृष्ण के प्रेम के लिए हर समय बड़े ही पागल की तरह आचरण कर रहे थे, और सची माता और उनकी जो पत्नी थी निमाय पंडित की विष्णु प्रिया, ये दोनों भी निमाय से हर समय डरते थे चैतन्य महाप्रभु से। क्यों? क्योंकि जब ये नवरित में थे तो हर समय केवल कृष्ण के लिए रोया करते थे। हाँ किसी भी कोई भी चीज की कोई किसी भी चीज की बात उनको करनी होती थी तो वो कृष्ण से संबंधित थी वो बात किया करते थे। और सची माता देखती थी कि मेरे पुत्र को क्या हो गया है, क्योंकि भगवान ने तो मेरे पति को ले गए जगन्नाथ मिश्र को और उनके जो बड़े बेटे थे विश्वरूप उनको भी ले गए, तो कृष्ण को कहते कि आपने एक ही मेरा पुत्र है विश्वंभर और ये भी ऐसे पागल की तरह हरकतें कर रहा है, तो आप कृपा करिए कि इसका जो दिमाग है वो ठीक हो जाए। तो निमाय पंडित कृष्ण के लिए पागल हो गए थे। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा है कृष्ण के लिए पागल होना। तो जो सची माता है कभी कभी क्या करते थे कि सोचती थी कि इसका मन इसके पत्नी में होगा, तो विष्णु प्रिया को पकड़ के लाते थे और जब निमाय पागल की तरह कृष्ण कृष्ण कहते थे तो उनको सामने बैठा देते थे कि कम से कम अपने पत्नी का चेहरा देखकर तो ये शांत हो जाएगा और पत्नी से कुछ वार्तालाप करेगा। तो निमाय पंडित शेर की तरह गर्जना करते थे और विष्णु प्रिया को मारने के लिए दौड़ पड़ते थे, विष्णु प्रिया वहां से भाग के चले जाते थे। हाँ तो इस प्रकार से वातावरण हो गया था। तो सची माता बहुत ही अधिक चिंतित थी कि निमाय को क्या हो गया है। तो एक दिन चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, प्रभु रघुचर। तो एक दिन गदाधर पंडित, हाँ जो निमाय के बहुत अधिक प्रिय मित्र थे सेवक थे, अपने हाथ में तांबुल ले आते हैं पान, और गदाधर पंडित जैसे सामने आते हैं तो निमाय पंडित उनको कहते हैं कोथा कृष्णा छिन्न श्यामल कितवासा। वो कहते हैं कि गदाधर आप बताओ कि कृष्ण कहाँ है, कौन से कृष्ण जो श्यामल है, हाँ जिनके श्याम श्याम सुंदर है और जिन्होंने पीत वस्त्र धारण किया है, पीतांबर धारण किया है, ऐसे कृष्ण कहा है। तो इस प्रकार से जब निमाय पंडित ने उनको पूछा कि ऐसे कृष्ण कहा है, और निमाय पंडित ये बोल के उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रहे थे और रो रहे थे, तो जैसे गदाधर पंडित को उन्होंने देखा तो गदाधर पंडित को कुछ और नहीं सूझा तो गदाधर पंडित तुरंत बोल पड़े। गदाधर ने कहा गदाधर महाशय कृष्ण कहते हैं कि जो कृष्ण है जिनको आप ढूंढ रहे हो कि कहां मिलेंगे कृष्ण, वो कृष्ण तुम्हारे हृदय में है। आगे कहते हैं हृदय आचेन कृष्ण वचन सुनिया अपना हृदय प्रभु चिर न खिया। तो जैसे निमाय पंडित ने सुना कि कृष्ण तो हृदय के भीतर है, तो निमाय पंडित ने अपने कपड़ों को फाड़ दिया और अपने छाती को हनुमान जी की तरह फाड़ने लगे कि अंदर हृदय में मेरे कृष्ण मिल जाएंगे। तो जैसे ये हो रहा था तो गदाधर पंडित ने तुरंत उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा कि निमाय कृष्ण भी आएंगे, हाँ कृष्ण को मत तुम्हारे हृदय को मत फाड़ो, कृष्ण भी आएंगे और तुम उनके राह देखो। जैसे ही गदाधर पंडित ने ये कहा तो निमाय पंडित शांत हो गए और उनसे चर्चा करने लगे, और ये सारा जो कार्यकलाप सची माता सामने खड़ी थी वो इन दोनों के इस प्रसंग को देख रही थी और सची माता देखती कि निमाय के ऐसे कार्यों को मैं देखकर तो डर जाती हूँ और भाग जाती हूँ मैं यहाँ से। तो लेकिन ये जो गदाधर है ये इतना बुद्धिमान लड़का है कि ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि निमाय को कैसे शांत किया जाए। तो सची माता कहती है निमाय गदाधर पंडित को, हाय बले बाप तुम्हें सर्वदा था कि बा छाड़िया गुहार संग कोठा न जाएगा। तो फिर सची माता ने कहा कि हे गदाधर तुम हर समय निमाय के साथ रहो और निमाय को छोड़ के तुम किसी और स्थान में मत चले जाना। तो इस प्रकार से सची माता ने कहा था कि आप निमाय के साथ हर समय रहो। तो निमाय जो गदाधर पंडित है बचपन से ही बहुत अधिक वैरागिक है, उनका जो मन है पारिवारिक जीवन के प्रति आसक्त नहीं था। आगे चलकर गदाधर पंडित ने संन्यास ग्रहण किया। तो गदाधर पंडित जो साक्षात कृष्ण है जिनका वर्णन कई ग्रंथों में आता है और नवद्वीप में भी जब वो थे तो उस समय एक विशेष एक लीला घटित हुई थी। तो चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के हाथ को पकड़ के नवद्वीप में कई वन होते थे, जैसे वृंदावन जो नवद्वीप है दोनों अभिन्न है। तो जो वृंदावन में हम 12 वन देखते हैं वो सारे वन नवद्वीप में भी हैं। तो अभी तो हम उनको देख नहीं पाते हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु के समय वो सारे वन प्रकट हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कभी कभी गदाधर पंडित के हाथ को पकड़कर हम उन वनों में अपने कई सारे भक्तों के साथ चले जाते थे। तो जब हम शाम के समय गौर आरती गाते हैं तो उसमें भी वर्णन आता है कि गदाधर चैतन्य महाप्रभु के बामे गदाधर कि उनके लेफ्ट साइड में गदाधर पंडित हैं चैतन्य महाप्रभु के। तो ये जो गौरात्रि का वर्णन हम सुनते हैं तो ये वनों में हुआ था। ये सारे वैष्णव अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित नित्यानंद प्रभु और जितने भी ये वैष्णव थे ये सारे लोग वनों में जाते थे और वहां चैतन्य महाप्रभु जाह्नवी तट बने, जाह्नवी के जो गंगा नदी के किनारे जो वन होते थे उनमें बैठा करते थे सिंहासन के ऊपर। और ये सारे वैष्णव जो जो वर्णन हम पढ़ते हैं वो सारा वर्णन के अनुसार कार्य करते थे, नरहरि चामर करते थे, करताल बजते थे, मृदंग बजते थे। तो इस प्रकार से इन सब चीजों का वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में गदाधर पंडित के बारे में। और गदाधर पंडित महाप्रभु को इतने अधिक प्रिय थे कि निमाय पंडित के घर में शालिग्राम शिला होती थी चैतन्य महाप्रभु के घर में। और उनका प्रेम कृष्ण के लिए इतना अधिक था कि निमाय पंडित जैसे ही अपने घर में सुबह के समय शालिग्राम की पूजा करने के लिए शुरुआत करते थे तो उनके हाथ कांपने लगते थे निमाय पंडित के चैतन्य महाप्रभु के, और केवल उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहती थी। कृष्णदास कविराज कहते थे कि इतने आंसू बहते थे कि गंगा नदी या गंगा जो रिवर है वो फ्लो हो रही है ऐसे महसूस होता था। और फिर सारे उनके कपड़े चैतन्य महाप्रभु के जो कपड़े हैं वो पूरी तरह से उन आंसुओं के जो पानी है उससे गीले हो जाते थे। तो क्योंकि यदि कपड़े इस प्रकार से गीले हैं तो पुजारी को भगवान का अर्चन नहीं करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु फिर से क्या करते थे अपने कपड़े उतार देते थे, फिर गंगा में स्नान करने जाते थे और फिर जाकर शालिग्राम की पूजा शुरू करते थे। और जैसे ही शुरू करते थे फिर से वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे। तो ऐसा वर्णन आता है कि जो कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात एक प्रकार से राधा रानी है या राधा रानी का मूड उन्होंने धारण किया है तो राधा रानी कृष्ण के शरीर का स्पर्श कर रहे हैं। शालिग्राम शिला भगवान से अभिन्न है तो जैसे ही शालिग्राम का स्पर्श करते थे चैतन्य महाप्रभु तुरंत उनको रोना आ जाता था। और फिर उन्होंने देखा कई दिन बीत गए कि मैं शालिग्राम की पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, तुरंत वो गदाधर को बुलाते हैं कि हे गदाधर मैं शालिग्राम की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ तुम क्या करो,
ना इनको स्वीकार करो, ना तुम इनकी पूजा करो। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी जो शालिग्राम शिला है वो गदाधर पंडित को देते हैं पूजा करने के लिए, और गदाधर पंडित उस शालिग्राम शिला की भी पूजा करते हैं। तो नवद्वीप में कई ऐसी लीलाएं हैं जो गदाधर पंडित से संबंधित आती हैं। तो एक बार गदाधर पंडित जो उनके एक मित्र थे मुकुंद दत्त, जो कृष्ण के कीर्तन गाने में बहुत अधिक मधुर रूप से कृष्ण के नामों का कीर्तन किया करते थे, तो एक दिन मुकुंद दत्त ने कहा कि नवद्वीप में बहुत बड़े वैष्णव आए हैं, बहुत महान भक्त आए हैं, तो हे गदाधर हम दोनों एक साथ जाएंगे उस महान वैष्णव का दर्शन करने के लिए, क्योंकि महान वैष्णव को देखने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। दर्शन पवित्र करम हे तुम्हारा गुण, कि भगवान के भक्तों को देखने मात्र से हमारा मन हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, जो गंगा नदी से भी अधिक पवित्र है, क्योंकि गंगा के पास हमें जाना पड़ता है, गंगा में जब हम स्नान करेंगे तब हम पवित्र हो सकते हैं, लेकिन वैष्णवों के साथ ऐसा नहीं है, भगवान के भक्तों के साथ ऐसा नहीं है। भगवान के भक्तों का केवल हम दर्शन करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। तो मुकुंद ने कहा कि हे गदाधर आप चलो मेरे साथ, हम महान वैष्णव का दर्शन करेंगे। तो गदाधर पंडित को बहुत आनंद होता था वैष्णव को मिलने के लिए और वैष्णव से सुनने के लिए। तो ये एक वैष्णव का लक्षण है कि वो जब भक्ति में उन्नति करता है तो उसका एक लक्षण है कि उसको भक्तों के संग में ही अच्छा लगता है और वो भक्तों का संग करना चाहता है और भक्तों के द्वारा भगवान के बारे में सुनना चाहता है। तो जब गदाधर पंडित मुकुंद के साथ जाते हैं एक वैष्णव के घर में जिनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि, तो पुंडरीक विद्यानिधि के घर जाते हैं, तो वहां जाकर गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि को प्रणाम करते हैं, और जैसे गदाधर बैठते हैं मुकुंद बैठते हैं, तो मुकुंद दत्त और जो पुंडरीक विद्यानिधि है वो एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, इसलिए उनका बहुत अधिक मैत्रीपूर्ण संबंध था। तो पुंडरीक विद्यानिधि पूछते हैं कि ये जो बालक था, ये जो तुम्हारे साथ हैं, ये बालक जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है, उसका स्वभाव भी बहुत शिक्षित महसूस हो रहा है और इसके चेहरे में बहुत तेज मुझे दिख रहा है कृष्ण भक्ति का, पुंडरीक विद्यानिधि कहते हैं, तो इसका नाम क्या है और ये कहां से है? तो मुकुंद दत्त कहते हैं कि मिश्रेर नंदन नाम गदाधर, कि ये मिश्र का पुत्र है और इनका नाम गदाधर है, जो नवद्वीप में रहता है और बचपन से ही कृष्ण के प्रति इसका बहुत प्रधान अनुराग है। तो इस प्रकार से जब वो चर्चा कर रहे थे तो गदाधर पंडित ने देखा उस वैष्णव को, उन्होंने देखा, पहले सोचा अपने मन में कि अरे मैंने इनके बारे में तो बहुत सुना था कि ये तो बहुत महान वैष्णव है, लेकिन अभी मैं देखता हूं तो उन्होंने क्या देखा वहां कि पुंडरीक विद्यानिधि जो इतने बड़े भक्त थे लेकिन उनका जो आचरण है और उनका जो घर और ताज समान था वो किसी भोगी व्यक्ति के समान था जिसका मन विषयों में बहुत अधिक लीन हो गया है। तो गदाधर पंडित ने देखा कि उनकी वो बड़े बेड के ऊपर लेटे हुए हैं और मुंह में पान चला रहे हैं और उनके ओठ लाल हो गए हैं और बार बार अपने ओठों को देखकर पुंडरीक विद्यानिधि हंस रहे हैं और दो उनको फैन मोर पंख लेकर उनको हवा लगा रहे हैं और उनके पास कई सारे पान रखे हैं खाने के लिए और बेड के दोनों साइड से पिगदान रखा है सूखने के लिए, बेड से ही वो सूखते थे पिगदान, और बहुत सारे ऐश्वर्यशाली चीजों का वो यूज कर रहे हैं, 10-12 लोग कोई उनको चरणों में तेल लगा के मसाज कर रहा है और उनके जो बाल है बहुत लंबे और जिसमें आंवले का तेल अमल की का तेल लगाया और पूरे रूम में सुगंध हो रहा है। तो गदाधर पंडित ने जब देखा कि ये कैसे वैष्णव हो सकता है, मैं तो सोचता था वैष्णव तो बहुत विरक्त होता है और बहुत महान है, तो जैसे उनके मन में ये विचार आए पुंडरिक विद्याधरी के प्रति, तो गदाधर पंडित के साथ मुकुंद जो गए थे उन्होंने सोचा कि इनके मन में इस वैष्णव के प्रति कुछ बुरे विचार आ रहे हैं। तो ये भक्त का कर्तव्य होता है, एक तो जो उन्नत भक्त होता है वो हमारे मन को पहचान लेता है कि क्या चल रहा है, जैसे गुरु होते हैं प्रभुपाद जी अपने भक्तों के हृदय में क्या हो रहा है तुरंत पहचान लेते थे, और जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो भी अपने शिष्यों के मन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऐसे उन्नत भक्तों का या उन्नत वैष्णव का जो संबंध है परमात्मा से बहुत अधिक निकटता होता है। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, एक बार एक भक्त बता रहा था कि महाराज वृंदावन के लिए निकल रहे थे, तो सुबह से इसके हृदय में चल रहा था कि मुझे भी महाराज तक जाना है वृंदावन। तो अचानक गुरु पूजा के बाद उस भक्त ने महाराज को प्रणाम किया, तो महाराज ने उसको सीधा बोल दिया कि तुम मेरे साथ वृंदावन जाना चाहते हो। तो भक्त सुन के ही हैरान हो गया कि कैसे इनको इस बात का पता चला कि मैं सोच ही रहा हूँ, उन्होंने आगे किसी के पास प्रकट नहीं किया था। तो उसने कहा कि हाँ, मैं सुबह से इसी आकांक्षा से जब भी कर रहा हो तो यही सोच रहा था कि मैं आपके साथ वृंदावन जाऊँ, क्योंकि महाराज इसको वृंदावन ले जाते हैं अपने साथ। इस प्रकार से महान वैष्णव इस चीज को देखते हैं और वो हमारे मन को हमारे हृदय को पढ़ लेते हैं, ये आध्यात्मिक गुरु इस प्रकार के होते हैं। तो मुकुंद ने तुरंत गदाधर के मन में क्या चल रहा है वो पढ़ लिया, और तुरंत क्या किया, अपराध करने से रोक लिया। इसलिए एक भक्त को हमेशा सतर्क होना चाहिए कि कोई भक्त अपराध कर रहा है तो उसे तुरंत रोकना चाहिए। जैसे सोचो 10 लोग किसी घर में रहते हैं, और घर का व्यक्ति यदि घर को आग लगा देता है एक व्यक्ति, तो उस आग से कितने लोग जल जाएंगे, सारे लोग जल सकते हैं। तो उसी प्रकार से कोई एक व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसका प्रभाव सब कम्युनिटी पर पड़ता है, सब लोगों पर पड़ता है। तो उस अपराध को तुरंत जो व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति ने तुरंत जो अपराध कर रहा है व्यक्ति उसको रोकना चाहिए। तो गदाधर पंडित के मन में ही आपके विचार आए थे या अपराध की भावना आए थी पुंडरिक विद्याधरी के प्रति, तो मुकुंद ने तुरंत उस चीज को रोका। और उन्होंने कैसे रोका, तो वर्णन आता है चैतन्य भागवत में कि मुकुंद दत्त ने श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का एक श्लोक गाया जिसमें कृष्ण के भक्ति का वर्णन किया था, कृष्ण के महिमा का वर्णन किया था। तो उन्होंने गाया, राक्षसी पुतना शिशु खाए से हृदया, ईश्वर बहते गेरा काल पुतलया। तो उन्होंने कहा, ये चीज को गाया कि जो राक्षसी है पुतना जो छोटे छोटे बच्चों को खाया करते थे, एक दिन वो वृंदावन में गई, अपने स्तन को बहुत जहरीला विष लगाकर कृष्ण को मारने के लिए, तहारे वो मात्र पद दिले न ईश्वरे न भरे अघोर जीवा है न दयाले रहे। तो वो कहने लगे कि इस भावना से पूतना आए कि कृष्ण के पास कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन फिर भी कृष्ण क्या करते हैं, गोलक वृंदावन में अपने माँ का उसको स्थान प्रदान करते हैं। वो कहते कि ऐसे है कृष्ण, ऐसे कृष्ण का भजन आप नहीं करना चाहते। तो जैसे कृष्ण की इस महान गुण का वर्णन किया मुकुंद दत्त ने, तो उस समय जो पुंडरिक विद्याधरी जो पान खा रहे थे, इतनी प्रकार की सेवाओं को स्वीकार कर रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि कोई राजकुमार ही हो, गदाधर पंडित को ऐसे लग रहा था कि ये तो राजकुमार है, कोई इतने सारे चीजों को भोग रहा है। तो जैसे ही कृष्ण लीला के श्लोक को सुना तीसरे स्कंद के, तो पुंडरिक विद्याधरी कृष्ण के प्रेम में वो पागल हो गए, और जो भी चीज उनके सामने थी उन सबको उन्होंने तोड़ डाला, और उस जिस बेड पर थे वहां से गिर पड़े और कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्लाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, और मूर्छित होकर गिर पड़े। तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं कि वो दो प्रहर एक एक प्रहर 3 घंटे का होता है, तो 6 घंटे के लिए कृष्ण प्रेम में पागल होकर पुंडरीक विद्यानिधि उस समय ऐसे ही रहे। तो ये जब गदाधर पंडित ने देखा तो उनको समझ में आ गया कि मैं अपने मन में जिस चीज के बारे में सोच रहा था वो गलत था। तो गदाधर पंडित को अपने जो उन्होंने मन में अपराध किया था उस बात का स्मरण हो आया। तो इस चीज से हम सीख सकते हैं कि हम किसी वैष्णव के प्रति अपराध करना शुरू करते हैं मन से, फिर मन से कई बार कई मनन करते हैं उस भक्त के बारे में और अपराधों के बारे में, फॉल्ट के बारे में या दोषों के बारे में। तो फिर जैसे जैसे हम मन में अधिक चिंतन करते हैं किसी भक्त के दोष से संबंधित, तो फिर एक ना एक दिन हमारे वाणी से वो प्रकट होता है। और तीसरी स्टेज क्या है कि हमारे शरीर से वो प्रकट होता है। जैसे कृष्णा बुक में भृगु का वो वर्णन आता है, भृगु कि सारे ऋषि मुनि एकत्रित हो गए और उन्होंने ये सोचा, कहा कि ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु इनमें से कौन भगवान है, इसकी परीक्षा ली जाए। तो भृगु मुनि को चूज किया था कि भृगु मुनि आप जाओ और सबको टेस्ट करो कि कौन भगवान है। तो भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को कोई आदर नहीं देते, प्रणाम नहीं करते और उनको नेग्लेक्ट करके चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आता है, तो मन से उनका अपराध करते हैं भृगु। और फिर आगे शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी के पास जाकर वो शिव जी, क्योंकि भृगु और शिव जी ये दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ये दोनों आपस में भाई हैं। तो जैसे भृगु मुनि आ रहे थे तो शिव जी ने दोनों हाथ ऊपर किया और बोला कि हे बंधु आओ गले मिलते हैं। तो भृगु ने कहा नहीं नहीं तुम तो स्मशान में रहते हो, सारी जो लाख अपने शरीर में लगाते हो, भूत प्रेतों के साथ रहते हो, मेरा स्पर्श मत करो। तो इतना कुछ कुछ बातें बोलने लगे शिव जी को, इतना गुस्सा आ गया शिव जी को। तो पार्वती ने उनको रोका, तो वहां से वो आगे जाते विष्णु के पास। तो विष्णु लेटे हुए थे और उनके चरणों का मसाज लक्ष्मी जी कर रहे थे। तो जब लक्ष्मी मसाज कर रहे थे तो भृगु मुनि जाते और कृष्ण लेटे हुए थे, विष्णु उनके छाती में जाकर जोर से लात मार देते हैं। तो विष्णु तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं और भृगु के चरणों को पकड़ के कहते हैं कि हे ऋषिवर, मेरा जो हृदय है बहुत अधिक कठिन है, शायद आपके जो कमल जैसे चरणों को कष्ट पहुंचा होगा। तो इस चीज को सुन के भृगु मुनि स्तंभित हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान कौन है, विष्णु है, कृष्ण है। तो इस घटना से भी कृष्ण लीला में हम सुनते हैं कि यदि हम मन से किसी वैष्णव के प्रति अपराध की भावना रखते हैं तो एक ना एक दिन उसके नेक्स्ट स्टेप है हमारे वाणी से वो प्रकट हो जाएगा। और उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर हम फिजिकली फाइट करेंगे उस वैष्णव के साथ। तो इसीलिए वो जो दोष की भावना है किसी वैष्णव के प्रति या दोष बुद्धि है, वो आने से पहले ही खत्म कर देनी चाहिए। और वो खत्म कैसे होगी, जब जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम यदि हरे राम का आश्रय लेते हैं भक्तों के सर में, तो ये जो दोष की भावना है वो खत्म हो सकती है। तो गदाधर पंडित ने सोचा कि मैंने इस प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति अपराध किया है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो गदाधर पंडित ने कहा कि मैंने अभी तक दीक्षा नहीं लिया है, मैंने किसी को आध्यात्मिक गुरु के रूप में नहीं स्वीकार किया है, तो मैं पुंडरीक विद्यानिधि को आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो फिर मुकुंद को उस बात को बताते हैं और चैतन्य महाप्रभु से भी पूछते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उनको हाँ कह देते हैं। तो फिर जाकर गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि से उनको गुरु के रूप में पुंडरीक विद्यानिधि को स्वीकार करते हैं और पुंडरीक विद्यानिधि भी इतने अधिक खुश हो जाते हैं कि इस प्रकार का ऐसा अद्भुत शिष्य मुझे मिल जाए तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से जो गुरु हैं वो भी इतने विनम्रता से सोचते हैं। जैसे प्रभुपाद अपने एक पुस्तक के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि मेरा ये सारा प्रयास है कि कोई एक शुद्ध भक्त बन जाए। या भागवतम के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मेरा शिष्य इतना महान भक्त हो जाए कि वो मुझे भगवान के धाम ले जाए। ऐसा नहीं है, प्रभुपाद हजारों लोगों को ले जाते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद इतना विनम्रता प्रकट करते हैं। ध्रुव महाराज के चरित्र के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इस बात का वर्णन करते हैं। तो गदाधर पंडित कई प्रकार की लीलाएं उन्होंने नवद्वीप में की, और चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने से पहले कई भक्तों को बताया कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ। तो गदाधर पंडित भी उनमें से एक थे जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ। तो जैसे इस बात को बोला तो गदाधर पंडित को जैसे शौक लग गया हो, हाँ, कि उनके सर में कोई वज्र गिरा हो। उन वो डांटने लगे निमान चैतन्य महाप्रभु को कि आपकी एक पत्नी है, आपकी केवल एक माँ है, हाँ, और आप संन्यास लेने के लिए निकले हो। ऐसी बात कौन से शास्त्र में कही है कि गृहस्थ जीवन में रह के कृष्ण का प्रेम नहीं प्राप्त किया जा सकता। हाँ, तो निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु बहुत डांटते हैं कि ऐसा नहीं है कि संन्यास लेने मात्र से ही कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो गदाधर पंडित इस बात को सुनते हैं और चैतन्य महाप्रभु थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन फिर भी आगे चलकर कटवा में जाकर चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं और सची माता की आज्ञा से जगन्नाथपुरी में जाकर निवास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब 24 साल के थे तो उन्होंने संन्यास लिया, और बाकी जो 24 साल हैं उन्होंने जगन्नाथपुरी में रहे। तो चैतन्य महाप्रभु 48 साल इस जगत में उन्होंने अपनी लीलाएं प्रकट की। और चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए तो हर साल नवद्वीप से कई सारे भक्त उनको मिलने आते थे। तो जो पहला ग्रुप आया था उनको मिलने, तो उनमें गदाधर पंडित थे। तो गदाधर पंडित उनको मिलने आए और गदाधर पंडित की रहने की व्यवस्था चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में ही की थी। और अब जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो वहाँ उस समय तो एक जंगल था, टोटा, टोटा मीन्स गार्डन, एक गार्डन था समंदर के किनारे। चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ यमेश्वर टोटा नाम का जो स्थान है वहाँ गदाधर पंडित के रहने की व्यवस्था की थी। तो चैतन्य महाप्रभु रोज, चैतन्य महाप्रभु का नियम था, सुबह चैतन्य महाप्रभु बहुत जल्दी उठते थे, समंदर में स्नान करते थे रोज सुबह, और फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे। और जो गरुड़ स्तंभ है, जैसे आप देखते दिल्ली मंदिर में गरुड़ जी हैं, दूर है, तो जगन्नाथ जी से भी बहुत दूर है गरुड़ जी, बहुत आगे हैं जगन्नाथ जी। तो चैतन्य महाप्रभु गरुड़ जी के स्तंभ के पीछे खड़े रहकर जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे, और महाप्रभु 7 घंटे खड़ा रहकर जगन्नाथ को देखा करते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु देखते थे जगन्नाथ जी को, वो तृप्त नहीं होते थे देखते देखते। और नीचे ऐसा वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में कि जहाँ चैतन्य महाप्रभु खड़े रहते थे वहां एक पत्थर था जो पिघल गया था, हाँ, एक बाल्टी के समान वो बन गया था। तो चैतन्य महाप्रभु जितना रोते थे उसमें कई सारा पानी भर जाता था उनकी आंखों से, और चैतन्य महाप्रभु जिस पत्थर पे हाथ रख के दर्शन किया करते थे, हाँ, वो भी आज भी आप जाते हैं जगन्नाथपुरी तो वहां भी वो पिघला हुआ पत्थर है, 3 उंगलियां महाप्रभु की उसमें है। तो आज भी जो गौड़िया वैष्णव जाते हैं जरूर आपने 3 उंगलियां और उंगलियों में डालते हैं जो पत्थर पिघला है, और उसको ऐसे पकड़ के जगन्नाथ जी को देखते हैं सामने। तो चैतन्य महाप्रभु उनका दर्शन करके फिर आके हरिदास ठाकुर को मिलते थे, फिर प्रसाद देते थे, फिर स्नान करते थे, और फिर गदाधर पंडित के पास जाते थे। और गदाधर पंडित के पास जाकर चैतन्य महाप्रभु उनसे श्रीमद् भागवतम सुना करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु इस बात की शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम के प्रति
अनुराग होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जाकर उनसे श्रीमद् भागवतम सुना करते थे और श्रीमद् भागवतम की विशेष रूप से प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज का जो चरित्र है वो सुना करते थे। तो एक दिन ऐसे हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके निकल आए, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो आके गदाधर पंडित के पास आए और सर पंडित को कहने लगे कि मुझे आप कृष्ण के बारे में सुनाओ। तो अभी वो पूरी तरह से कृष्ण के लिए पागल हो गए थे चैतन्य महाप्रभु। तो जब गदाधर पंडित के पास आए, गदाधर पंडित ने एक घास की झोपड़ी बनाई थी और गदाधर पंडित उसमें रहा करते थे। तो जब उनके पास आए और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप मुझे कृष्ण के बारे में सुनाओ, तो जैसे उन्होंने कृष्ण के बारे में सुनाया तो चैतन्य महाप्रभु रोने लगे और चिल्लाने लगे कि कहाँ है कृष्ण, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो वहाँ बहुत सारा समंदर का बालू का ढेर था, तो चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से सारे बालू को अपने हाथों से साइड में करके ढूंढ रहे थे कृष्ण को। तो ऐसे एक स्थान में चैतन्य महाप्रभु गए और बालों को हटा रहे थे तो उनको कृष्ण का मुकुट दिखाई दिया। तो उन्होंने देखा कि ये तो कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु बोला कि यहाँ कृष्ण है, आप सब लोग आओ। तो सब गदाधर पंडित और सब लोग जाते हैं और देखते कि कृष्ण का बहुत ही सुंदर त्रिभंग ललित जो कृष्ण खड़े हैं, बंसी उनके हाथ में है, इस रूप में उनको विग्रह मिलता है। तो सारे वैष्णव उस बालू को हटा देते हैं और कृष्ण के उस विग्रह को निकालते हैं बाहर। और जो चैतन्य महाप्रभु उनका नाम देते हैं गोपीनाथ, कि ये गोपियों के नाथ हैं। तो जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी तो द्वारका कहा गया है, कृष्ण का वो स्थान द्वारका है। और लेकिन वृंदावन की भावना जब महाप्रभु को चाहिए होते थे तो वो गदाधर पंडित के पास आते थे यहाँ गोपीनाथ के विग्रह का दर्शन करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ को गदाधर पंडित को प्रदान करते हैं और गदाधर पंडित को कहते हैं कि तुम इनकी आजीवन सेवा करो। तो गदाधर पंडित ने जगन्नाथपुरी में क्षेत्र संन्यास लिया था। क्षेत्र संन्यास का मतलब है कि एक स्थान से, उस क्षेत्र से बाहर नहीं जाना। मतलब गदाधर पंडित कभी जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं जाते थे और गोपीनाथ की सेवा वो कभी नहीं छोड़ते थे। तो महाप्रभु ने कहा ये दो चीजें अपने जीवन में करो, या उन्होंने भी ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अपने जीवन भर इन दो चीजों का पालन करूंगा, एक तो गोपीनाथ की सेवा करूंगा और दूसरा क्षेत्र संन्यास, जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकले तो गदाधर पंडित को रहा नहीं गया। गदाधर पंडित इतने आसक्त थे चैतन्य महाप्रभु से, उन्होंने कहा मैं आपके साथ आऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, तुम वापस चले जाओ, मेरे साथ मत आओ। तो गदाधर पंडित ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं आ रहा हूं, मैं अकेला जा रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु रोड के उस किनारे से चलते थे और गदाधर पंडित भी इस किनारे से, कहते थे मैं आपके साथ नहीं आ रहा हूं, मैं नवद्वीप जा रहा हूं सची माता का दर्शन करने और गंगा में स्नान करने। कहते हम दोनों का कोई संबंध नहीं, आप अपने वृंदावन जाओ और मैं भी जाऊंगा। तो महाप्रभु कहते ठीक है, अभी ये सुन ही नहीं रहा है। तो जब वो लोग कटक आते हैं और कटक में महानदी है, बहुत ही बड़ा नदी है, अब ट्रेन तो आपको लगेगा कि कब खत्म होगी, इतना लंबा है तो महानदी। तो जब चैतन्य महाप्रभु महानदी को क्रॉस करने वाले थे और नाव में बैठने वाले थे तो गदाधर का हाथ पकड़ते हैं और गदाधर को बहुत जोर से डांटते हैं, कहते कि तुमने ये तो व्रत लिया है, क्षेत्र संन्यास लिया है और गोपीनाथ की सेवा में कभी नहीं छोड़ूंगा जीवन भर, और तुम वो छोड़ के आ रहे हो। तो वो कहते कि गोपीनाथ वो कहते हैं कि मेरा जो क्षेत्र संन्यास है वो नरक में जाओ, मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा। और फिर वो कहते कि गोपीनाथ की सेवा करो, वो कहते हैं, गदाधर पंडित कहते हैं कि आपके चरणों को देखने से गोपीनाथ की सेवा हजारों हजारों बार हो सकती है। गोपीनाथ की सेवा से ज्यादा बढ़कर क्या है,
केवल आपके चरणों का दर्शन करना। तो लेकिन भगवान का क्या स्वभाव होता है कि भक्तों के भक्त जो प्रतिज्ञा लेता है भगवान उसको रखते हैं। जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि आज या तो पांडव मरेंगे या कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा। कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र उठाऊंगा नहीं महाभारत के युद्ध में। तो इतने जोरदार भीष्म ने युद्ध किया तो उस दिन पांडव मर ही जाते, लेकिन कृष्ण ने अस्त्र उठाया। मतलब अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ली लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा रखी, क्या कि कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से महाप्रभु ने देखा कि मेरे भक्त की प्रतिज्ञा है कि क्षेत्र संन्यास जगन्नाथपुरी से बाहर जाऊंगा और गोपीनाथ की सेवा करूंगा। तो महाप्रभु उसको डांटते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगा यदि तुम गोपीनाथ की सेवा करोगे, और फिर उनको जोर से डांट के वापस भेजते हैं और महाप्रभु नाव में बैठ के चले जाते हैं। तो गदाधर पंडित वह मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं उस समय के लिए। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य गदाधर पंडित को वापस जगन्नाथपुरी में ले आते हैं। तो इस प्रकार से गदाधर पंडित की कई लीलाएं चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में हुई। जब जगन्नाथ रथ यात्रा हुआ करती थी तो चैतन्य महाप्रभु सात टोलियां बनाते थे रथ यात्रा के आगे नाचने के लिए, सात ग्रुप। तो उनमें से एक ग्रुप के जो लीडर थे वो थे गदाधर पंडित। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को गदाधर पंडित के जो गोपीनाथ थे वो बहुत प्रिय थे। चैतन्य महाप्रभु कभी कभी रोज ही जाया करते थे श्रीमद् भागवतम सुनने। तो जब भी जाते थे तो गोपीनाथ को चैतन्य महाप्रभु जाके आलिंगन किया करते थे कई लंबे समय के लिए। गोपीनाथ को अपने भुजाओं में पकड़ के उनका आलिंगन किया करते थे। तो गोपीनाथ जो चैतन्य महाप्रभु को भी बहुत अधिक प्रिय थे, और नित्यानंद प्रभु भी वहां आते थे गोपीनाथ का दर्शन करने के लिए, गोपीनाथ का प्रसाद स्वीकार करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु भी जैसे हमने कहा कि रोज गोपीनाथ का दर्शन करने जाते थे, प्रसाद लेने के लिए जाते थे और गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना प्रेम प्रदर्शित किया गदाधर पंडित के प्रति कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित और कई सारे जो वैष्णवगण टोटा गोपीनाथ मंदिर में कीर्तन करते थे, और ये कीर्तन करने का उनका हर बार बहुत सारे कीर्तन किया करते थे मिलके। और लेकिन चैतन्य महाप्रभु हर बार जब कीर्तन बहुत जोर से होता था तो गोपीनाथ का जो आल्टर है उसके अंदर जाया करते थे और गोपीनाथ का आलिंगन किया करते थे दरवाजे बंद करके। तो लेकिन एक दिन क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु इतना कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, रो रहे थे। तो लेकिन अचानक चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ के दरवाजे खोले और अंदर गए गोपीनाथ के आल्टर में, और गोपीनाथ और जैसे महाप्रभु अंदर गए उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए गोपीनाथ के आल्टर के। तो भक्तों को लगा कि महाप्रभु तो अंदर ही गए हैं जो हर बार की तरह जाते हैं। तो लेकिन इस बार जब चैतन्य महाप्रभु अंदर गए तो फिर चैतन्य महाप्रभु बाहर नहीं आए, गोपीनाथ के विग्रह में चैतन्य महाप्रभु विलीन हो गए। तो कई भक्त जब नाच रहे थे गा रहे तो देखा कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ है, तो देखा कि चैतन्य महाप्रभु अंदर गए हैं मंदिर के आल्टर के अंदर। तो कुछ भक्तों ने दरवाजा खोल के आल्टर में गए तो देखा चैतन्य महाप्रभु नहीं है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जो अपनी अप्रकट कि जो लीला है वो गोपीनाथ के दिव्य शरीर में एक अप्रकट होकर की थी, और चैतन्य महाप्रभु ने लीला से ये दिखाया था कि किस प्रकार से गदाधर पंडित मुझे प्रिय है और उनके गोपीनाथ विग्रह मुझे कितने प्रिय है। तो जैसे गदाधर पंडित ने सुना कि श्री चैतन्य देव ने अपने लीलाएं अप्रकट की है तो गदाधर पंडित बहुत अधिक दुखी हो गए और उनके आंखों से केवल आंसू बहते थे और ऐसा वर्णन आता है कि वो हर रोज एक साल ऐसे महसूस होता था उनको, एक दिन उनको एक साल की तरह महसूस होता था और वो बूढ़े हो जाते थे इस प्रकार से। तो गदाधर पंडित बहुत अधिक दुखी हो गए और जब वो बूढ़े हो गए थे चैतन्य महाप्रभु अप्रकट होने के बाद 11 महीने के बाद वो भी गोपीनाथ के विग्रह में लीन हो गए गदाधर पंडित। ऐसा नहीं कि उन्होंने शरीर छोड़ा, क्योंकि साक्षात श्रीमती राधा रानी है। तो गदाधर पंडित ने इस प्रकार से अपनी अप्रकट करने की जो लीला प्रकट की चैतन्य महाप्रभु के समान ही, और चैतन्य महाप्रभु के बाद गदाधर पंडित बहुत अधिक विराह में अपने दिन बिताया करते थे और वो इतने अधिक ओल्ड हो गए थे या दुख से कि गोपीनाथ बहुत ऊंचे थे, खड़े थे, लेकिन गोपीनाथ को रोज सेवा करते थे, गोपीनाथ की उनको माला पहनाया करते थे, लेकिन अभी वो माला नहीं पहना पाते थे। तो गोपीनाथ अपने भक्त से सेवा लेने के लिए गोपीनाथ बैठ जाते हैं और फिर उनकी सेवा किया करते थे गदाधर पंडित। तो आज भी आप जगन्नाथपुरी में छोटा गोपीनाथ मंदिर में जाते हैं तो कृष्ण पद्मासन में बैठे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं और उनके साथ ललिता और श्रीमती राधा रानी हैं। तो इस प्रकार से गोपीनाथ जो गदाधर पंडित के बहुत अधिक प्रिय विद्यार्थ हैं और भी कई सारी लीलाएं आती हैं चैतन्य चरितामृत में या चैतन्य भागवत में, आप उन लीलाओं को पढ़ सकते हैं आगे चलकर। तो गदाधर पंडित का आज आविर्भाव है और आज के दिन गदाधर पंडित से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से उनका श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए अटैचमेंट था, चैतन्य महाप्रभु के लिए आसक्ति थी, लगाव था, कि उसी प्रकार का लगाव है श्री गदाधर पंडित हमें प्रदान करें। और फरीदाबाद में तो विशेष रूप से गदाधर पंडित के विग्रह हैं, बाकी किसी मंदिरों में नहीं है, ज्यादातर मायापुर में है और कुछ ही मंदिर में है, इस्कॉन के 5 मंदिरों में। तो मायापुर में तो आज के दिन गदाधर पंडित का अभिषेक होता है, तो गदाधर पंडित की कृपा यहाँ भी फरीदाबाद में प्रकट हुई है और गदाधर पंडित से आप याचना कर सकते हैं। और गदाधर पंडित की विशेषता क्या है, कृष्ण के प्रति विरह, सेपरेशन। तो ये विरह या फिर ये जो सेपरेशन कब अनुभव होता है किसी व्यक्ति को, जब किसी चीज के प्रति आसक्ति होती है। तो हमें गदाधर पंडित से भगवान के नाम रूप गुण लीला श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति आसक्ति का दान मांगना चाहिए आज के दिन। और इस प्रकार से जब हम उनसे मांगते हैं तो गदाधर पंडित आज के दिन बहुत उदार हो जाते हैं हर एक को अपनी कृपा प्रदान करने के लिए। श्री गदाधर पंडित के श्री चैतन्य देव के निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न हो? ये अद्वैत आचार्य के बारे में है। अद्वैत आचार्य जब छोटे थे उनका नाम कमलाक्ष था, तो अद्वैत आचार्य अपने पिता के साथ जाते और देवी के मंदिर में, तो सब कहते कि आप इनकी देवी को प्रणाम करो। तो अद्वैत आचार्य जो देवी के पति हैं, पत्नी को कैसे प्रणाम करो? तो अद्वैत आचार्य जो साक्षात महाविष्णु हैं और दुर्गा देवी उनकी सेविका हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये छोटे बालक थे अद्वैत आचार्य। तो राजा जो था वहाँ के और अद्वैत आचार्य के पिता थे, तो उन्होंने कहा आपको प्रणाम करना है। तो कहते नहीं मैं नहीं करूँगा प्रणाम। तो लेकिन सबने इतना बोल किया कि अद्वैत आचार्य प्रणाम जैसे किया, तो जो भी देवी का जो विग्रह था उसके कई सारे टुकड़े होके गिर पड़े अलग अलग। तो आदित्य ने कहा कि मैं शुरुआत नहीं कह रहा था हाँ कि मैं प्रणाम नहीं करूंगा और आप लोग सुन नहीं रहे थे। तो ये अद्वित आचार्य के जीवन चरित्र में आता है। और गदाधर पंडित का विशेष जो आसक्ति था अद्वित आचार्य के साथ नवदीप में, और रोज गदाधर पंडित अद्वित आचार्य के घर में जाकर सुना करते थे भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को। और अद्वित आचार्य से उन्होंने काफी शिक्षा प्राप्त की थी दो ग्रंथों की, भगवद गीता की और श्रीमद् भागवतम की। हाँ, तो इसलिए कलियुगा में मन के अपराध छूट हैं। तो मन से जो हम अपराध होते हैं कलियुगा में, तो वो गिने नहीं जाते हैं, क्योंकि एक दिन भी ऐसा नहीं होता जिस दिन हम कुछ करते नहीं है। क्योंकि दो प्रकार के कीर्तन है, एक है गुण कीर्तन और दूसरा है दोष कीर्तन। तो हम बद्रजीव क्योंकि कृष्ण के गुण के कीर्तन में हमें आनंद नहीं आता है सुनने में, गुणों का गान करने में, तो हमारा स्वाभाविक रुचि क्या है? दोष कीर्तन में है। और हमारी स्थिति प्रभुपाद कहा करते थे, सज्जना गुण इच्छति दोष इच्छति पामरा, कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दोषों को नहीं देखते हैं, जबकि जो दुर्जन है वो दोषों को देखते हैं। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि जो सामान्य मक्खी है जो गंदे स्थान में बैठती है, वैसा मक्खी बनने का प्रयास मत करो जीवन में। बनना है तो कौन सा मक्खी बनो? मधुमक्खी, जो सारे अलग अलग गार्डन में जाके फूलों में जाके बैठती है और स्वीट मकरन इन चीजों को इकट्ठा करती है। तो इसी प्रकार से ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में बाधा है। और चैतन्य महाप्रभु का चरित्र आप सुनते हैं पढ़ते हैं, तो महाप्रभु ने कम से कम हजार बार बोला है दो चीजों को। महाप्रभु ने कहा, चाहे कोई कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो, चाहे शिव जी के समान क्यों ना हो या फिर सन्यासी क्यों ना हो, वो भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करेगा कर पाएगा यदि वो अपराध कर लेगा। तो महाप्रभु ने कहा ये कृष्ण प्रेम बहुत सर है यदि आप ये दो चीजों को अपने जीवन में लाते हो। एक तो है कि जो दोष बुद्धि है या फिर अपराध की अपराध वैष्णव के प्रति जो अपराध है वो उसको खत्म करना, अपराध नहीं करना। और दूसरा है भगवान के नामों का उच्चारण करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दो चीजें हैं। तो यदि कोई चीज देखनी है तो हमें भक्तों के गुणों को देखना चाहिए। और क्योंकि यदि हम दोषों को देखते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका मनन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो वही दोष हम में भी आ जाते हैं। और ये स्वाभाविक है, ये क्या है? स्वाभाविक है। इसलिए किसी भक्तों के हम गुण देखेंगे, गुणों की चर्चा करेंगे, तो वो गुण हमारे अंदर आते हैं। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि यदि हम भक्तों के गुणों की चर्चा करते हैं तो 1% जो क्वालिटीज है जिस भक्त की चर्चा कर रहे हैं हम, जैसे आज कुछ हम गदाधर पंडित के बारे में सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो जो साक्षात श्रीमती राधा रानी हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के सबसे महान भक्त हैं। तो जब ऐसे वैष्णवों का, किसी भी वैष्णवों का आचार्यों का सुनते हैं, गुणगान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उनके जो 1% क्वालिटीज हैं पद्म पुराण कहता है कि वो आपके हृदय में ट्रांसफर हो जाएंगी, आपके हृदय में चले जाएंगी। तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत सरल अभ्यास है भक्तों के गुण को ये करना। भक्ति सिद्धार्थ महाराज के मठ में जब दो ब्रह्मचारियों का आपस में फाइट होता था तो वो दोनों आते थे, कहते देखो ये कैसा है, और वो कहते इसमें ये कर दिया, ये ऐसा है, भक्ति सिद्धार्थ महाराज शांत होते थे, दोनों को सामने बिठाते थे और कहते थे कि बताओ हाँ इसमें क्या अच्छे गुण है, और इसको बोलते थे तुम बताओ इसमें क्या अच्छे गुण है। हाँ फिर वो अपने दिमाग को लगाना पड़ता था कि सही में इस भक्त में कुछ अच्छे गुण है क्या, तो फिर उसको पता चलते थे कि हाँ अच्छे गुण है हर एक भक्त में। तो इसलिए ये एक वैष्णव का लक्षण है कि गुणग्राही ना देखे दोष, वैष्णवेरा गुणग्राही ना देखे दोष, कि वैष्णव होता है गुणों को स्वीकार करता है और दोषों को त्याग करता है। और कभी कभी ऐसे भी भक्त होते थे, भक्ति सिद्धार्थ महाराज बिठा देते थे और वो कहते थे कि बताओ क्या गुण है, तो कहते थे एक भी गुण नजर नहीं आ रहा है मुझे उसमें, तो उनको पिटाई करते थे भक्ति सिद्धार्थ महाराज, डांट लगाते थे, कहते तुम तो बहुत ही नीच हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के अंदर एक गुण नहीं हो। हाँ भागवतम में तो एक जो दत्तात्रेय इस सृष्टि से 24 गुरु बनाते हैं, 24 शिक्षाएं वो प्राप्त करते हैं, भागवतम में आप 11वें स्कंध में पढ़ेंगे। तो मतलब कृष्ण ने ये संसार ऐसा बनाया है कि पूरी अरेंजमेंट है हमें वापस जाने के लिए उनके पास, यदि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो हर चीज हमें कृष्ण का स्मरण दे सकती है। आप देखेंगे कि हमारे एक आचार्य थे जिनका नाम था बंसीलाल बाबा जी महाराज, वो जब ट्रेन में बैठते थे या ट्रेन की चक्का को देखते थे, ट्रेन के इतने बड़े बड़े व्हील्स होते हैं, चक्का होते हैं, उनको देखने मात्र से उनको जगन्नाथ की बड़े बड़े आंखों का स्मरण होता था और वो मूर्छित हो जाते थे। अब देखो बंसीलाल बाबा जी महाराज जो भक्ति सिद्धार्थ महाराज के समय थे हमारी परंपरा के आचार्य, कि ट्रेन के व्हील्स को देखकर जगन्नाथ का स्मरण, क्योंकि जगन्नाथ की आंखें कैसी हैं, गोल गोल हैं, बड़ी बड़ी हैं। तो इस प्रकार से भक्त का स्वभाव क्या है, जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरित, कि जहां जहां उसके नेत्र पड़ते वहां वहां कृष्ण स्फुरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भक्त का स्वभाव होता है, भक्त का ये गुण है। और ये भावना तभी विकसित होती है जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो भगवान के संबंधित उनके कार्यकलापों की चर्चा करते हैं, तो ये चेतना फिर स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। और उसी लिए हम सब लोग यहाँ हैं कि ऐसी चेतना का विकास करने के लिए, कृष्ण चेतना वो हो सकती है जब हम भगवान के भक्तों के संग में सिंसियरली और गंभीरता से कृष्ण भक्ति में अपने आप को लगाते हैं। पंडित के श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री राधा गोविंद के